ओम शांति। 9th March 1981। मुरली तो सुनी, अब सुनने के बाद स्वरूप में लाना। एक होता है स्मृति में लाना और दूसरा है स्वरूप में लाना। जो कुछ सुनते हैं स्मृति में तो सब लाते, अज्ञानी भी सुने हुए को याद करते हैं, लेकिन ज्ञान का अर्थ ही है स्वरूप में लाना। तो कौन सी बात स्वरूप में लाएंगे बालक सो मालिक, यह है स्वरूप में लाना। पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध का अनुभव हो, ऐसे नहीं अभी तो पुरुषार्थी है, प्रारब्ध भविष्य में मिलेगा। संगम युग की विशेषता है ही अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ भाग्य अब का है। अभी का वर्षा तो प्राप्त है ना, पा लिया है या पाना है? अगर पा लिया तो फिर फरियाद तो नहीं करते हो अमृत वेले? या तो है याद या है फरियाद। जब याद है वहां पर, जहां याद है वहां फरियाद नहीं, और जहां फरियाद है वहां याद नहीं, तो फरियाद समाप्त तो हुई, क्वेश्चन मार्क समाप्त। फरियाद में होता है क्वेश्चन मार्क और याद में है फुल स्टॉप, अर्थात बिंदी। बिंदी स्वरूप बन बिंदी को याद करना है। बाप भी बिंदी, आप भी बिंदी। तो परिवर्तन भूमि में आकर कोई ना कोई विशेष परिवर्तन जरूर करना चाहिए। अब फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी बन करके जाना। फरियाद में क्या होता है और क्या नहीं होता है? उलझन होती है और क्या नहीं होता? खुश नहीं। तो बाप से खुशी का खजाना लेना है, उलझन नहीं। उलझन तो लौकिक बाप का खजाना था, अब वह तो खत्म हो गया। लौकिक संबंध खत्म तो फरियाद भी खत्म। 9th March 1981 की मुरली। एक है मुरली सुनना और दूसरा है स्वरूप में लाना। एक है याद रखना और दूसरा है स्वरूप में लाना। याद तो अज्ञानी भी रखते हैं, परंतु ज्ञान का अर्थ ही क्या है? स्वरूप में लाना। सारी बातें पता रहना परंतु कर न पाना, तो क्या उसको ज्ञानी कहेंगे? अमृत वेले का अर्थ पता है, अमृत वेले का महत्व पता है, फिर भी अमृत वेला न हो पाना, फिर भी अमृत वेला नींद आना, फिर भी अमृत वेला शक्तिशाली न होना, तो क्या उसको ज्ञानी कहेंगे? फिर बाबा ने कहा है कि संगम युग जो है उसकी विशेषता है कि पुरुषार्थ और फल दोनों ही साथ साथ। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ यहाँ और फल बाद में। अभी का जो गायन है वो पा लिया है कि पाना है, ये है। या तो है याद और या फिर है फरियाद। जहां याद है वहां फरियाद नहीं। फरियाद जो है उसमें क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। और याद में क्या होता है? फुल स्टॉप। फरियाद अर्थात फरियाद मतलब क्या? फरियाद अर्थात फरियाद का शब्द अर्थ कंप्लेन करना। फरिश्ता अर्थात संडे की मुरली। क्या याद रखो? निरंतर एक स्मृति रहे, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं। उसमें कहा था नो कंप्लेनिंग और नो कंफ्यूजन। कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। दिल बाप को दे दी है, बाप दिल में समाया हुआ है, बीच में कोई आ नहीं सकता। खिड़की दरवाजा मार्जिन बंद, मन संकल्प बोल और कर्म बुद्धि, ये चार दरवाजे या खिड़की, ये फरिश्ते के स्वरूप है सारे। एक तो है याद, या तो है फरियाद। जहां फरियाद है वहां पर याद नहीं हो सकती। फरियाद में प्रश्न है, फरियाद में क्वेश्चंस है। तो ब्राह्मण भी फरियाद करते हैं, फरियाद अर्थात कंप्लेंट्स। कंप्लेंट में असंतुष्टता का भाव है, अस्वीकार्य का भाव है चीजों को, वस्तुओं को। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिसके बारे में ब्राह्मण कंप्लेंट करते हैं या जिसकी फरियाद करते हैं। बाबा कह रहे उसको फुल स्टॉप लगाओ, कंप्लेंट्स जो है उसको फुल स्टॉप। तो हम थोड़ी उस पर चर्चा करेंगे, कौन कौन सी वो बातें हैं। ऐसी 10 बातें जिसकी ब्राह्मण कंप्लेंट करते हैं। सबसे पहली स्वयं के बारे में, उसमें GYDS, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो जी में ज्ञान के बारे में कंप्लेंट, हमारा चिंतन नहीं चलता। आज की मुरली में बोला है, साकार मुरली में, मुख को खोलने की प्रैक्टिस करो। कौन सी प्रैक्टिस करो? मुख को खोलने की। क्या इसकी भी प्रैक्टिस चाहिए? मुख तो खोलने में, ज्ञान सुनाने की यहां बात चल रही है। पहला तो ज्ञान के बारे में कंप्लेंट्स कि हमारा चिंतन नहीं चलता, हमको कुछ मत देना, हमारा चिंतन नहीं होता है। चिंतन करने जाए तो दिमाग भारी हो जाता है, बाकी सब चीजों का चिंतन होता है, ये छोड़कर, ज्ञान छोड़कर। ज्ञान का चिंतन, ज्ञान योग, योग की कंप्लेंट्स, नींद आती है, योग नहीं लगता, मन भटकता है, बेचैनी होती है। योग में बैठो तो उठ उठ के इधर से देखते रहते हैं दूसरे क्या क्या कर रहे हैं, दूसरा का योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उनकी भी तो मदद करना है। ज्ञान योग धारणाएं नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल है। यहां तो चलो ठीक है, बाहर की बात है, ये जो धारणा है यहाँ की बहुत कड़ी धारणा है, नहीं हो पाती है। सेवा, सेवा की कंप्लेंट्स, बहुत सेवा बहुत है, टाइम नहीं मिलता, थकाने वाली सेवा है, सेवा का कोई ठिकाना नहीं है, दिन रात। एक है स्व के प्रति कंप्लेंट्स, दूसरी कंप्लेंट है दूसरों के प्रति, ये लोग ठीक नहीं है, संस्कार मिलन इनके साथ चलना बहुत मुश्किल है, लोगों के प्रति कंप्लेंट है। उसमें 3 लोग, एक सीनियर, एक साथी और एक जूनियर। सीनियर्स के प्रति कंप्लेंट, साथियों के प्रति कंप्लेंट और जूनियर्स के प्रति कंप्लेंट। जूनियर्स क्या करते, छोटे, सुनते नहीं बिल्कुल, कितना समझाओ बिल्कुल नहीं सुनते, इतनी बार सिखाया इनको फिर भी वही गलती फिर करते। कितनी बार सिखाए, 10 बार तो सिखा दिया, 10 बार सिखाने के बाद में भी कुछ नहीं, सारी मेहनत पानी में, लगन ही नहीं है इनमें। हम जब थे छोटे इनकी उम्र के तो कैसे हमने 10 दिन में सीख लिया था, और ये 10 महीने से अब तक नहीं सीख पाए छोटी सी बात। जूनियर्स, साथियों के प्रति कंप्लेंट्स, क्या कंप्लेंट है अपने साथियों की? जीवन भाई जी क्या कंप्लेंट है आपकी? नहीं है बाकियों की? सहयोग नहीं देते, टाइम पर सहयोग नहीं देते, इतना बीमार है, 100 बुखार चल रहा है, पूछते भी नहीं भोजन किया कि नहीं किया। और सपोर्ट, सहयोग और समय पर धोखा दे देते, काम में टांग अड़ाते हैं, और कुछ भी हो सकती है, व्यक्तियों के प्रति कंप्लेंट्स। वो पहली सूफी संत, पहली इस्लाम में पहली सूफी संत महिला राबिया। राबिया जब एक बार किसी एक गांव में पहुंची, वो एक शहर एक गांव से दूसरे गांव जाती रहती, और क्योंकि सूफी मत की थी, मतलब उसके विचार थोड़े अलग थे, और जो कट्टर मुसलमान होते हैं उनका विरोध होता है सूफियों के प्रति, तो थोड़ी लेट किसी गांव में पहुंची तो किसी ने उसको आने नहीं दिया, अपने घर में रहने के लिए स्थान नहीं दिया। जिसने भी देखा दरवाजा बंद कर लिया, कुछ कुछ अपशब्द कहे, तुम लोग तो हो ही ऐसे, कभी भी आ जाते हो, काम धंधा तो कुछ नहीं, बस घूमते रहते हो ऐसे ही ऐसे। सूफी एक अपने आप में अलग परंपरा है, जो भगवान को अपना जैसे प्रेमी समझते हैं, उस तरह की धारणा इस्लाम में नहीं है। तो वो पहली सूफी संत है, तो सब जगह से उसको निकाल दिया। अब इतनी रात हो गई, आधी रात कहाँ जाएगी, तो वो बाहर गई खेतों में और वहां पर लेट गई, और उसने देखा कि कितनी चांदनी रात है, चंद्रमा की रोशनी चांदनी है, इतनी अच्छी हवाएं चल रही है, और एकदम से उसके मन में जागा भाव कि कितनी मैं भाग्यवान हूँ, कितना मेरा भाग्य है कि मैं आज इस चांदनी रात में यहाँ हूँ, और मेरा प्रेमी मेरे साथ है, और बहुत धन्यवाद देने लगी। और फिर सुबह उठकर गई और सबको धन्यवाद दिया, उन सारे लोगों को जिन्होंने दरवाजा रात में बंद कर दिया था, कि बहुत अच्छा, आपके कारण मुझे ये इतना अलौकिक अनुभव हुआ रात में। व्यक्ति के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है उसकी, बुराई है उससे क्या करना है, कल का वरदान अच्छाई का पार्ट ले लेना है, जो भी हो रहा है पेशेंस एंड टॉलरेंस दो चीजें उससे सीखनी है, धैर्यता और सहनशीलता। जो भी चीजें हो रही है ये दो चीजें सिखाने के लिए हो रही है, हमारे धैर्य की परीक्षा है और हमारे सहनशीलता की परीक्षा है, कहां तक हम सहन कर सकते हैं। तीसरा है सीनियर्स, सीनियर्स के प्रति क्या कंप्लेंट है, दादागिरी, बिना वजह तकलीफ देते रहते हैं, और बिना वजह योग में बैठे बिना वजह बुला लेते हैं, कोई काम था नहीं फिर भी बुला लेते हैं, और हमेशा कितना भी खुश करो कितना भी अच्छा काम करो फिर भी असंतुष्ट, फिर भी कभी तारीफ नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि तुमने अच्छा काम किया, और नहीं पहले हम देख लेते कंप्लेंट क्या क्या है, ट्रीटमेंट बाद में आएंगे, ट्रीटमेंट तो अच्छी बड़ी ट्रीटमेंट है, और क्या कंप्लेंट है, पार्शियलिटी, पक्षपात करते हैं सदा, बड़े खतरनाक अनुभव है आपके तो, सताने की आदत है, आदत ही पड़ गई, चैन नहीं आता है तब तक, और गलतियां निकालते हैं, नुक्ताचीनी, और जब जरूरत हो तो नहीं देते, हाँ तो उनके प्रति बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं हमारे, हाँ डांट किस बात के लिए, गलती करेंगे तो कर डांट तो करेंगे ना, हाँ बिना गलती के तो किस लिए डांट मारते, आदत। तो अपने को बड़े समझते हैं। दूसरी कंप्लेंट हमारी है, पहली है स्वयं के प्रति, दूसरी है व्यक्तियों के प्रति, तीसरी है भाग्य के प्रति, या कहो ड्रामा, मेरे भाग्य में ही ऐसी बात लिखी हुई है, मेरी तकदीर। भाग्य पॉजिटिव शब्द है, तकदीर या नसीब उससे भी थोड़ा निगेटिव अर्थों में जाता है, नसीब में ही ये था, फूटी किस्मत, बाकी सब कितने अच्छे हैं, ये सब लोग कितने अच्छे से ज्ञान योग करते हैं। हमारा तो हर चीज में कोई ना कोई टांग अड़ाता है, नसीब भी फूटा है, तकदीर ही ऐसी है। हाँ नहीं, वो दूसरा उसमें आएंगे। हाँ वो चलो, वो 100 में आ जाएगा, 100 में भी एक है वो कारण, एक तकदीर का वो भी है कि शरीर। हाँ बरबर, शरीर ही साथ नहीं देता तो क्या करे। तो और तकदीर, तकदीर के ना भाग्य को दोष देते कि बुद्धि ही काम नहीं करती, क्या करे, कुछ भी याद नहीं रहता है। और तो तकदीर को दोष, तीसरा। चौथा दोष, परिस्थितियों को दोष। ये परिस्थितियां ऐसी थी, क्या करे, हम तो बहुत अच्छे थे, ये परिस्थिति ऐसी आई तो कोई करे तो क्या करे, इसमें इतनी क्या कहेंगे, विकराल परिस्थिति। ऐसी परिस्थिति में ही हिम्मत हार गई, नहीं तो हिम्मत तो बहुत थी, पर परिस्थिति ऐसी भयंकर थी कि हार गए, डराने वाली परिस्थिति थी। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि नेपोलियन जब युवा था तो इतना उमंग, इतना उसके अंदर साहस था कि वो कहता था कि असंभव शब्द मेरी शब्दकोश में है ही नहीं, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, मूर्खों की शब्दकोश में है, मेरे शब्दकोश में असंभव कुछ भी नहीं, कुछ भी असंभव नहीं था उसके लिए। जो भी जितनी लड़ाइयां लड़ी उसने, सब लड़ाइयों में वो जीता। एक बार ऐसा हुआ कि वो एक लड़ाई के लिए जा रहा था, वहां बीच में अल्प्स जिसको इंग्लिश में कहते, हिंदी में अल्पस नाम का बहुत बड़ा विशाल पहाड़ आने आया था। तो वहां पे उसको एक बुढ़िया मिलती है, तो वो बुढ़िया उसको पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहती है मुझे उधर जाना है। वो कहता है अल्पस पहाड़ के को पार करना है। वो कहता है बिल्कुल छोड़ दो, आज तक इस पहाड़ को किसी ने भी पार नहीं किया और इसको पार करना असंभव है। तो वो उससे बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है कि वाह तुमने तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात बता दी, अब ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और उसको बहुत एक बख्शीश देता है, हीरो का हार। और वो बुढ़िया भी देखती रहती कि शायद लग रहा है तुम करोगे पार, क्योंकि वो कहता है ये तो मैं हर चुनौती को तो स्वीकार करना ही मेरा काम है, यही तो मैंने किया है हमेशा। परंतु उसके जो साथी होते हैं नेपोलियन के सिपाही, वो कमांडर होता है आर्मी का चीफ, वो साथी डर जाते हैं, वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, ऑलरेडी थक चुके हैं, तो हम तो नहीं पार करेंगे वो अल्पस पहाड़ को, क्योंकि बुढ़िया ने भी कह दिया है कि असंभव है, उसको पार करना मतलब मृत्यु का आह्वान करना है, इतना जबरदस्त, इतना ऊंचा, इतना पथरीला वो पहाड़ है कि आज तक इतिहास में किसी ने भी उसको पार नहीं किया है। तो नेपोलियन क्या कहता है अपने साथियों से, वो कहता है क्या आप में से किसी ने अल्पस पहाड़ देखा है, वो कहते नहीं हमने तो नहीं देखा है। वो कहते चलो ठीक है, आप लोगों ने देखा नहीं ना, आप मेरे साथ चलो, जब अल्पस पहाड़ आ जाएगा तब मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपकी चलने की इच्छा हो तो चलना, नहीं चलने की इच्छा हो तो चले जाना वापस, तब तक तो चलो। हाँ इस बात से सारे सिपाही मान जाते हैं। तो अपना वो नक्शा निकालता है और चलना चालू करता है सारे बहुत बड़ी सेना के साथ, और बीच में एक पहाड़ आता है। तो वो सैनिक पूछते हैं क्या ये अल्पस पहाड़ है, वो कहता है रुको मैं देखता हूँ। अरे कहता है ये अल्पस पहाड़ नहीं, अल्पस पहाड़ तो अभी आगे है, वो इससे डेढ़ गुना बड़ा है, ये तो बहुत ही छोटा है, ये तो कुछ है ही नहीं। हाँ सिपाही कहते हैं चलो ठीक है। तो वो उसको पार करते हैं बड़ी मुश्किल से, वो पहाड़ को पार करके नीचे उतरते हैं। तो सिपाही पूछते हैं कहाँ है अभी, अभी तो यहाँ तो केवल जमीन ही जमीन दिखाई दे रही है। वो कहते हैं ये जो गया यही अल्पस पहाड़ था, ये जो गया यही अल्पस पहाड़ था। उसका बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग भी है, नेपोलियन क्रॉसिंग द अल्प्स माउंटेन सदर्न यूरोप। तो वो छोटा सा एक सिपाही होता है, जाकर फ्रांस का सम्राट बन जाता है एक दिन, लिटिल कॉर्पोरियल उसको कहा जाता है, इतनी सी हाइट थी उसकी, छोटी सी। बौना था वो, इतना छोटा था, इतना छोटा, बस इतना ही था। इतना छोटा व्यक्ति पर हौसले बुलंद थे, असंभव कुछ भी नहीं, जो भी आ जाए जीवन में बस असंभव आए तो और ही खुश होता था, जो किसी ने नहीं किया अब मुझे करना है। कठिन से कठिन काम उसने किए, हार कभी नहीं मानी जीवन में। तो किसके प्रति कंप्लेंट? परिस्थितियों के प्रति। परिस्थितियां हमें पाठ पढ़ाने आती है, सिखाने आती है। अगली कंप्लेंट है भगवान के प्रति कंप्लेंट, बाबा के लिए कंप्लेंट है। कौन सी कंप्लेंट है मीना सिस्टर बाबा के प्रति? ब्राह्मणों की, आपकी नहीं, कि बाबा मदद नहीं करता। परिस्थिति आ जाती है तो संपूर्ण साक्षी रूप धारण कर लेता है। बाकी उस दिन संडे की मुरली में कहा था, टीचर से मुलाकात, क्या कहा था? बाप को बुलाओ तो बाप हाजिर, ओबीडियंट है, हजार भुजाओं सहित। पर अनुभव में लोग अनुभव करते हैं कि बाबा तो आता नहीं, मुरलियों में कहता है बस, हम तो कब से पुकार रहे, परिस्थिति सामने खड़ी है, सुबह से जप कर रहे बाबा 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 बाबा, कब प्रकट होगा पता नहीं। तो बाबा के लिए कंप्लेंट, भगवान के लिए ही बहुत सारी कंप्लेंट। ये भी पार्शियलिटी करता है, देखा उनसे मिल रहा है ना तो ज्ञान ना योग, और उनके पास इतना टाइम दे रहा है। उनको दृष्टि और मुझे नहीं, एप्पल। उनको दे रहे, हमने क्या पाप किया, हमको क्यों नहीं, वो भी पार्शियलिटी। तो भगवान के लिए भी कंप्लेंट्स, तो एक ये अगली कंप्लेंट। दूसरे में परिवार भी आ जाएगा, दूसरे और परिवार, मतलब पर में आ गया वो, उसमें एक एडिशन हो सकता है। ये ब्राह्मण परिवार में कंप्लेंट्स, यहाँ के लोग और परिवार। और बाबा को शरीर होगा तो मालूम पड़ेगा, क्या चीज का मालूम पड़ेगा? तो एक तो उसके बाद में कंप्लेंट है समय के प्रति कंप्लेंट, समय के लिए कंप्लेंट। ये समय खराब चल रहा है, समय ही ऐसा है, परिस्थिति अलग, समय अलग चीज है। समय इस फोर्थ, एक अलग डायमेंशन है समय, समय समय की बात है। वो समय कुछ और था बाबा जब थे, अब समय दूसरा है। दादी जब थी तब समय दूसरा था, अब समय दूसरा चल रहा है। समय एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, समय के प्रति कंप्लेंट्स है। ये समय ही अच्छा नहीं है। दूसरा कंप्लेंट है स्थान के प्रति, टाइम प्लेस पर्सन, स्थान, स्थान के लिए कंप्लेंट्स क्या क्या? एकोमोडेशन। और स्थान के लिए कंप्लेंट, ये जगह, ये जगह में पता नहीं क्या है इसका, शास्त्र वास्तु शास्त्र का कुछ है इसमें, जगह में दोष है कुछ, तो जगह के प्रति कंप्लेंट। उसके बाद में नेक्स्ट प्रकृति के प्रति कंप्लेंट। फुल स्टॉप नंबर 11 जो था उसमें हमने ये पॉइंट्स निकाले थे, उसमें पॉइंट था कि ब्राह्मण आत्मा किस किस को दोष देती है, उसी के ये पॉइंट्स है। उसके दो तीन पॉइंट उसमें एडिशन किए, भगवान एक एडिशन हो गया, माया उसमें 7 पॉइंट्स हमने गिनाए थे। तो ड्रामा, और किसको दोष देते हैं, ये 3 जो बातें अभी एक्स्ट्रा बताई। एक तो ड्रामा, ड्रामा को दोष देते हैं कि ड्रामा ही ऐसा है, ड्रामा में मेरा पार्टी ऐसा है। एक तो भाग्य को दोष, नसीब, और एक है ड्रामा को दोष, एक है प्रकृति को दोष। ये प्रकृति, इसको क्या दोष देते हैं? ठंडी, गर्मी, बरसात, मच्छर, फॉग, हर चीज। ये मौसम रहा तो पुरुषार्थ अच्छा होता है, रास्ता खराब है, जाने की दिल नहीं होती है, चिंतन, हाँ, गाड़ी कौन सी? तो ये उसके बारे में कंप्लेंट। फिर है माया के प्रति कंप्लेंट, विकार, ये छोड़ते नहीं विकार, क्या करे, सब तो कर लिया। माया के लिए कंप्लेंट, और भी कोई कंप्लेंट है? कंप्लेंट उसके प्रति क्या कंप्लेंट? कंप्लेंट कंप्लेंट, भोजन, भोजन के प्रति थोड़ी कंप्लेंट है। व्यक्तियों में आ गया वैसे, वो सेवाधारी ठीक नहीं है। अच्छा, भोजन ठीक से नहीं परोसता, कम परोसता है कि ज्यादा परोस देता है? तो एक तो स्व के प्रति कंप्लेंट, दूसरों के प्रति कंप्लेंट, दूसरे में परिवार, परिस्थितियों के प्रति कंप्लेंट, समय के प्रति कंप्लेंट, स्थान के प्रति कंप्लेंट, भगवान के प्रति कंप्लेंट, भाग्य के प्रति कंप्लेंट, ड्रामा के प्रति कंप्लेंट, माया के प्रति कंप्लेंट और प्रकृति के प्रति कंप्लेंट। और एक भोजन, और भी कोई कंप्लेंट है? एक और बोल तो, बारह बनाने के लिए। और किसके लिए कंप्लेंट किया जाती है? वस्तुओं के प्रति भी कंप्लेंट है, कुछ कुछ वस्तुओं के प्रति कंप्लेंट, वो हो गया नेचर में क्लाइमेट आ गया। वस्तुओं के प्रति क्या कंप्लेंट है? अभी अभी नई खरीदी, खराब हो गई, इंटरनेट इतना स्लो है, बस ऐसे ऐसे पैसे घूमते रहना पड़ता है, वो बफरिंग 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 चलता ही नहीं, जल्दी चालू ही नहीं होता है, नेट स्लो, वस्तु है सारा आ जाएगा, ये साधन, वही वस्तु साधन, इनकी कंप्लेंट। तो ये सभी चीजों के लिए कंप्लेंट है, बारह चीजें हो गई। क्या किया जाए, ट्रीटमेंट क्या है अभी इसकी? कंप्लेनिंग जो नेचर है इसको कैसे किया, ठीक किया जाए? सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना चीजों को, उसमें भी एक शब्द और जोड़ो, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, और दूसरा एक होता है एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कहा गया है कि कांटे हैं और गुलाब का फूल है, तो इसको अलग अलग रीति से कहा जा सकता है। एक तो ये रीति से कहा जा सकता है कि कांटे ही कांटे हैं, नहीं गुलाब का फूल है पर सारे कांटे ही कांटे सराउंडेड है। दूसरा एक ये अर्थों से भी कहा जा सकता है, इतने कांटों के बीच में भी वो गुलाब है। एक ही चीज को दो अर्थों से देखा जा सकता है। तो हर सबसे पहले निगेटिव जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव करना। कंप्लेंट की जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि जो नजरिया हमारा निगेटिव है उसमें पॉजिटिव कुछ है क्या, वो ढूंढना। हाँ, मतलब वही सकारात्मक विधायक भाव कितना है, नकारात्मक भाव कम से कम, एक तो ये। दूसरा कहा एक्सेप्टेंस, चीजों को, जो चीजों को हम बदल नहीं सकते, जैसे व्यक्ति, परिस्थिति, क्लाइमेट, नेचर, ड्रामा, बहुत सारी चीजें ऐसी है, उनको स्वीकार करना, खुशी खुशी से स्वीकार करना। तीसरा है बी लेस जजमेंटल, हर चीज के बारे में जज नहीं करो कि यह व्यक्ति ऐसा ही है, यह व्यक्ति वैसा ही है, इसकी ये आदत ही है, उसकी वैसी ही आदत है। जजमेंट करना, हर बात में जज बन जाना, हर बात में जैसे जज बन के फैसला सुनाना कि ये व्यक्ति ये है, वो व्यक्ति वैसा है, हर एक के लिए हमने फिक्स्ड बना के रखा है, ये वैसा ही है, ये वैसा ही है, इसने ये, इसकी आदत है। तो लेस जजमेंटल। चौथा है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता। एक होता है ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना, ग्रेटिट्यूड जर्नल अर्थात आज कौन कौन लोगों ने, हम किन किन लोगों ने हमारी मदद की, आज किस किस चीज के लिए मुझे धन्यवाद देना है, तीसरा आज मैंने क्या क्या सीखा। जैसे एक व्यक्ति ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया परंतु मैंने दो चीजें सीखी कल की मुरली से, एक धैर्यता, दूसरा सहन करना। ये दो पार्ट, नहीं तो मुझे कैसे पता चलता कि मुझ में ये कमी है, इनकी धैर्यता की कमी है और इस चीज की कमी है, मुझे पता कैसे चलता। तो धन्यवाद उस व्यक्ति को और परिस्थिति को। तो ये है एक छोटा सा जर्नल, छोटी सी डायरी जिसको नाम दो ग्रेटिट्यूड जर्नल, कृतज्ञता, हर चीज में धन्यवाद। चार चीजें भी, तीन चीजें भी रात में हम लिख दें कि इन चीजों के लिए धन्यवाद। अच्छा, दिन में कोई परिस्थिति हुई नहीं तो न कोई चीज शांति रही, उसके लिए धन्यवाद। हर चीज के लिए धन्यवाद। वो दिखाए ना, दो फकीर होते हैं, छोटी सी झोपड़ी होती है दोनों की, दिन भर भिक्षा मांगते हैं। दिन में बहुत बड़ा तूफान आता है, सारा गांव इधर उधर हो जाता है। रात में बेचारे दोनों पहुंचते हैं तो देखते आधी झोपड़ी उड़ गई है, छत तो उड़ ही गया है। और एक साधु, एक फकीर कहता है कि भगवान सारा जीवन तुझको दे दिया, कम से कम सोने के लिए तो कम से कम अच्छी जगह रख, एक ही तो झोपड़ी थी, लोग देखो कितने अच्छे से सो रहे हैं, उनका तो थोड़ा थोड़ा गया है, हमारा तो पूरा ही तुमने ले लिया। बहुत दुखी मन से सो जाता है और नींद भी नहीं आती। दूसरा आता है, कहता है वाह क्या बात है, छत तो गया पर बाकी चार तो रखा दीवारें, और कितना आनंद आ रहा है अभी जमीन पे सोने के लिए कि इतने साल तो बाधा थी ये छत, आज आसमान देखते देखते सो रहा हूं, तारे दिखाई दे रहे हैं, कितनी चांदनी रात है, ऐसा निसर्ग का सौंदर्य आज तक तूने क्यों छुपा के रखा। तो बड़ा ही कृतज्ञता से, धन्यवाद के भाव से आराम से सोता है। परिस्थिति एक ही है दोनों के प्रति, तो कृतज्ञता। और क्या करेंगे कंप्लेनिंग नेचर को खत्म करने के लिए, कंप्लेंट्स को खत्म। कंप्लेंट बॉक्स बने हुए कई लोग, जहां पहुंचेंगे वहां कंप्लेंट। सीनियर के पास पहुंचना मतलब एक लिस्ट तो है ही कंप्लेंट की, तैयार ही है वो कब आए और उनको कंप्लेंट सुनाए। क्या असंतुष्टता का कारण क्या है उसको ढूंढना, कि वो कारण हमारे ही अंदर है कहीं ना कहीं, वो एक संस्कार बन गया है, हैबिट हो गई है। कंप्लेंट करते करते जैसे बाकी चीज बार बार करो तो हैबिट हो जाती है, वैसे कंप्लेंट भी बार बार करने से हैबिट हो गई है। तो अगर ये हैबिट बन गई है तो ज्यादा काम करना पड़ेगा उस पर, ये तो डायग्नोसिस चाहिए पहले, ये एडिक्शन हो गया एक। कंप्लेंट करते रहो, हर चीज की कंप्लेंट करते रहो, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, ये ऐसे वो ऐसे, लोग ऐसे, ये तो जगह ही ऐसी है, इनका तो स्वभाव ही ऐसा है, हमने सब देख लिया, ये हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हैं। और समाना, सहन करने की शक्ति बढ़ाना, और संस्कार मिलन की रास करना, जिनसे हमारा नई अनबन है वो भी देखना उसमें कि क्यों है और इससे क्या फायदा हो रहा है, इसकी गहराई में जाना, इस बात की। कर्म सिद्धांत को समझना, कर्म के सिद्धांत को समझना। और क्या करेंगे, कंप्लेंट्स को खत्म करना है। किससे पहले तो निकालो, ये जितने हमने पॉइंट्स निकाले, जैसे स्थान, स्थान का क्या करेंगे, स्थान बदलने से व्यक्ति नहीं बदलने वाला है, स्थान का हो गया। समय, हाँ ये समय कौन सा है, भगवान कह रहे हैं संगम युग, हर समय कल्याणकारी, और हम कहते हैं ये समय कल्याणकारी नहीं, तो शायद हमारा ही दृष्टिकोण गलत है। व्यक्ति हो गया, स्वयं के प्रति, ये जो हम कह रहे हैं कि ये सब मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होता, ऐसा ऐसा ऐसा, तो जरूर ज्ञान की कमी है, ज्ञान को बढ़ाओ, चिंतन को, कंप्लेंट्स को खत्म करने की सबसे श्रेष्ठ विधि है चिंतन, ज्ञान का चिंतन। ज्ञान के चिंतन में समय ज्यादा से ज्यादा देना, तो अपने आप जो कंप्लेंट्स है, हर एक की कंप्लेंट है सब चीजों के बारे में, अगर हम हमारे माइंड को अगर खोला गया और देखा गया तो कंप्लेंट के अतिरिक्त तो कुछ भरा ही नहीं है शायद उसमें, इतनी कंप्लेंट भरी हुई है, कुछ हम प्रकट कर रहे कुछ हम नहीं कर रहे, परंतु मन अतृप्त है, असंतुष्ट है उन कंप्लेंट्स के बारे में। बहुत सारे व्यक्तियों को, परिस्थितियों को हमने स्वीकार नहीं किया अंदर से, इसके लिए कंप्लेंट बॉक्स बनकर रह गया है माइंड। बाबा कह रहे हैं कि कंप्लेंट जब तक है तब तक प्रश्न रहेंगे, फुल स्टॉप, याद अर्थात फुल स्टॉप की स्टेज है, कोई कंप्लेंट नहीं है किसी के लिए भी। सारे व्यक्ति, 10 व्यक्तियों को आंखों के सामने लाए, इसके प्रति कोई कंप्लेन नहीं है, इसके प्रति भी नहीं है, इसके प्रति भी नहीं है, इसके प्रति भी नहीं है, कोई नहीं, ये जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं जो। और सबसे बड़ी चीज, बी द चेंज यू वॉन्ट टू चेंज, स्वयं वो परिवर्तन हो जाओ, वॉट यू वॉन्ट टू चेंज, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन अदर्स, वो चेंज तुम खुद बन जाओ। हम चाहते हैं ना ये व्यक्ति एकदम बदल जाए, वो नहीं बदलेगा, तुम बदलो।
उससे नर्दा हो जाओ।
वो निगेटिव चेंज हो गया, वो निगेटिव चेंज हो जाएगा। और उसमें वो भी करके देख सकते हैं, पर उसके बाद में परिणाम को फिर देखो क्या हुआ। टिट फॉर टैट, उसने जो किया, ईंट का जवाब पत्थर से हमने दिया, ठीक है, उसने एक कहा, हमने दस कहा, उसके बाद में परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? बुद्ध से जब, महात्मा बुद्ध से जब वो लोग मिलते हैं, एक गांव से गुजरते रहते तो लोग बहुत गालियां देते, बहुत गालियां देते, तो वो कुछ भी नहीं कहते, चुप होते, सबको पता है। वो कहते हैं कि अभी अभी मैं एक दूसरे गांव से आया, वहां कई सारे लोगों ने मुझे मिठाइयां दी, तो मैंने वो मिठाइयां नहीं ली, तो उन्होंने उसका क्या किया होगा? तो उन्होंने कहा कि वो लोगों ने वो मिठाई अपने घर पे अपने मित्र परिवार को दे दी होगी, तो आपने भी मुझे गालियां दी, वो मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो मैंने आपकी गालियां नहीं ली। हाँ, वो एक चीज यहां पर कहते हैं, यदि आप लोग 10 साल पहले मेरे पास आ गए होते तो शायद परिस्थिति कुछ और होती, तो मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देता, पर अब मेरे से वो संभव नहीं है। यदि आप लोग 10 साल पहले आ गए होते और आपने गालियां दी होती तो मैंने भी वैसा ही किया होता, पर अब नहीं कर सकता, अब मैं आपकी चीजें नहीं लेता हूं, तो वो गालियां किसके पास रही? आपने सौगात दी, आपके पास रह गई, मैं जा रहा हूं। तो और क्या करेंगे? लास्ट पॉइंट, सब पुरुषार्थी है, उनको भी समझना है परिस्थितियों को, अपने आप को उनके चप्पल शूज में बिठाना, टू पुट योर सेल्फ इन समबडीज शूज, उनके स्थान पर स्वयं को रखना और देखना। उनके तरफ से तो वो राइट ही है, हमारे तरफ से हम राइट है, पर उनके तरफ से वो भी राइट है। वो जो सोच रहे हैं, उनकी जितनी समझ, सोच, चिंतन, ज्ञान और योग है, धारणा है, उस हिसाब से तो वो राइट है। चाहे हमारी ज्ञान, योग, धारणा, सोच इतनी है, उनकी सोच इतनी है, परंतु राइट वो भी है, क्योंकि उनके हिसाब से वो राइट है, क्या करेंगे? उनकी किसी की बुद्धि उतनी है तो क्या कर सकते हैं? आप उनको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बिल्कुल सारा, बिल्कुल हमारे जैसा सब कुछ कर ले, एकदम ही तीव्र पुरुषार्थी बन जाए? अभी वो यहाँ है, ठीक है, ठीक है, आप एक रीति से चलो अच्छा ही है। हरेक की अपनी बुद्धि है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है। उतनी बुद्धि जितनी है उतना ही वो पुरुषार्थ करेगा, भाग्य है, पार्ट है, तो ज्यादा जबरदस्ती, फोर्स, खींच खींच के ज्ञान में लाना, ये सब नहीं करना है किसी को, अज्ञानियों को भी, और जो घर में जो मित्र संबंधी होते हैं ना, उसको रहता है, हर माँ बाप को लगता है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी बीच में, इंटरनेशनल पेरेंट्स रिट्रीट, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे कि हमारे बच्चों को ज्ञान में लाना है, क्यों लाना है? रहने दो उनको, जीने दो अपना जीवन, और जीने दो, क्यों ला रहे हो उनको? ठीक है, शुभ भावना रखो, अब वो उनको इंटरेस्ट नहीं है, क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती खींच के लाएंगे। मुझे याद है बहुत पहले हॉस्पिटल में, 2003 से भी पहले, कोई एक भाई था जिसके माँ बाप ज्ञान में थे और वो ज्ञान में नहीं था, तो उसको जबरदस्ती लेके आया इधर, और इधर हॉस्पिटल में उसको जॉब दिला दिया फार्मेसी में। तो वो क्या करता था, बाहर जाके बाहर का भोजन, नॉनवेज वगैरह लाके खाता था। अब क्या करेगा, उसको जबरदस्ती रख दिया तो क्या, वो थोड़ी ना रहेगा इधर, किसी को जबरदस्ती थोड़ी की जा सकती है ज्ञान के लिए। उसका जब टाइम होगा, पार्ट होगा, तो आएगा, ठीक है। तो उसके प्रति भी कोई कंप्लेन ना, सीनियर के प्रति, ना जूनियर के प्रति, ना ही साथियों के प्रति, ना स्वयं के प्रति, ना व्यक्ति, परिस्थिति, समय, माया, भगवान, भाग्य, भोजन, प्रकृति, सब जो है वो सब ठीक है। बी इन हार्मनी विद एवरीवन, सब ठीक चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं है। नहीं, ये अवस्था तक पहुंचने के लिए ही पुरुषार्थ है, यह अवस्था नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।